धवला पुस्तक तेरवी लेक्चर नंबर एक ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम शुद्धात्मने नमः नमो अरिहंताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयरियाणम् नमो वच्छायाणम् नमो लोहे सवसाहूणम् सयलो वसगणिवः संवरणेनेव जस्स फिट्टन्ति पाससतसनमिं फासनुयोम परुहेमो। आचार्य श्री वीरसेन स्वामी रचित यह धौला नामक टीका है जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबली आचार्य। इसमें जो पांचवा खंड है इसका नाम है वर्गणा खंड, और उसमें फासानुयोगत द्वारम यानी स्पर्श अनुयोग द्वार का यहाँ प्रकरण शुरू हो जाता है। यहाँ से अभी हम पढ़ते हैं। अभी हमने जो मंगलाचरण देखा था, गाया था, उसका अर्थ देखते हैं। नीचे देखो, जिसकी आराधना करने से ही सब प्रकार के उपसर्गों के समुदाय नष्ट हो जाते हैं। सयल उसगण वहा सर्व उपसर्ग नष्ट हो जाते हैं। संवरणेन एव यानी आराधना करने से ही उस पार्श्व जिनेन्द्र को पासस्य तस्य नमयुम उस पार्श्व जिनेन्द्र को नमस्कार करके फासनुयोम परुवेमो मैं स्पर्श अनुयोग द्वार का निरूपण करता हूँ। हमेशा जो मंगलाचरण में भगवान को नमस्कार करके विषय जो शुरुआत करने वाले हैं उसको कथन करते हैं। अब सूत्रों को पढ़ेंगे हम। फासेति अब स्पर्श अनुयोग द्वार का प्रकरण है। जो पहले स्पर्श अनुयोग द्वार का निर्देश कर आए हैं उसके अर्थ का कथन करते हैं। इस प्रकार इस सूत्र द्वारा पहले कहे गए अधिकार की संभाल की गई है। विशेषार्थ बता रहे इसी का। पहले सत प्ररूपणा की उत्थानिका में जो कृति वेदना आदि 24 संयोग द्वारों का नाम निर्देश कर आए हैं उनमें से प्रारंभ के दो अनुयोग द्वारों का विवेचन हो चुका है, यानी कृति और वेदना। स्पर्श यह तीसरा अनुयोग द्वार क्रम प्राप्त है, इसी बात का ज्ञान कराने के लिए फासेति यह सूत्र आया है। यह उक्त कथन का तात्पर्य है। सत प्ररूपणा की उत्थानिका यानी पहली पेज होना चाहिए, पहली पुस्तक होनी चाहिए। अब कहते हैं दूसरे पेज पर, पहले सूत्र पढ़ेंगे। तस्य इमानि सोलस अनुयोगत दाराणि नादववाणी भवन्ति फास निखेवे फास नय विभासन दाये फास नाम विहाणे फास दव्य विहाणे फास खेत्त विहाणे फास काल विहाणे फास भाव विहाणे फास पच्चय विहाणे फास सामित्त विहाणे फास फास विहाणे फास गई विहाणे फास अनंतर विहाणे फास संन्यास विहाणे फास परिमाण विहाणे फास भागाभाग विहाणे फास अप्पा बहुएति। ये 16 नाम पढ़कर किसकी याद आ गई? वर्गणा के यही नाम थे। वर्गणा निक्षेप, वर्गणा नय विभाषणता, वर्गणा नाम विधान, द्रव्य विधान, ये सारे के सारे। अभी उसके वर्गणा के बदले यहाँ स्पर्श शब्द डाले हैं। हाँ, अभी हम पढ़ रहे हैं हिंदी में से। सारे के सारे वही नाम है। उसमें ये 16 अनुयोग द्वार ज्ञातव्य है। स्पर्श निक्षेप, स्पर्श नय विभाषणता, स्पर्श नाम विधान, स्पर्श द्रव्य विधान, स्पर्श क्षेत्र विधान, स्पर्श काल विधान, स्पर्श भाव विधान, स्पर्श प्रत्यय विधान, स्पर्श स्वामित्व विधान, स्पर्श स्पर्श विधान, वहाँ वेदना वेदना विधान था, यहाँ स्पर्श स्पर्श विधान, स्पर्श गति विधान, स्पर्श अनंतर विधान, स्पर्श सन्निकर्ष विधान, वर्ष के ऊपर बिंदिया ये कुछ हो गया, स्पर्श परिमाण विधान, स्पर्श भागाभाग विधान और स्पर्श अल्पभूतव, ये अनुयोग द्वारों के पहले नाम बताए। नहीं नहीं अभी बताएंगे, अभी बताएंगे सब। स्पर्श का उसका अर्थ यहाँ क्या लेना है, क्योंकि उसमें भी स्पर्श कितने प्रकार के, उसमें से कौन सा लेना है, नाम है हा? वो तो निक्षेप के अनुसार उसमें भी बहुत सारे स्पर्श के अर्थ होते हैं, वो सब शुरुआत से बताएंगे। इस प्रकार स्पर्श अनुयोग द्वार के ये 16 अर्थाधिकार होते हैं। शंकाकार पूछते है यहाँ ये 16 अर्थाधिकार क्यों कहे गए हैं? समाधान, नहीं क्योंकि इनके बिना स्पर्श अनुयोग द्वार के ज्ञान कराने का अन्य कोई उपाय नहीं है। हमने हमेशा देखा है अनुयोग द्वारों की चर्चा है, अभी हमने वेदना का कितना विस्तार से वर्णन देखा, उसमें भी 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं 4 पुस्तकें थी, यहाँ पर भी ऐसा ही है। अब उद्देश्य के अनुसार निर्देश किया जाता है, निर्देश ने कथन, हमारा क्या उद्देश्य है उसके अनुसार उसका कथन भी होता है। इस न्याय के अनुसार पहले स्पर्श निक्षेप अधिकार का कथन करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं, कहते फास निक्षेवेति। अब स्पर्श निक्षेप का अधिकार है, यानी वो स्पर्श शब्द पर सारे अभी निक्षेप लगा के बताएंगे। पहले जिस स्पर्श निक्षेप का निर्देश कर आए हैं उसका यहाँ कथन करते हैं। अब शंकाकार की शंका है स्पर्श निक्षेप अधिकार किस लिए आया है, उसका समाधान, यह स्पर्श शब्द 13 अर्थों में विद्यमान है। आपका प्रश्न था ना उसका अर्थ क्या है, तो बताएंगे, पर हमें कौन सा अभिप्रेत है अर्थ, कौन सा हमें इष्ट है, उसकी भी बात करेंगे। तो कहते यह स्पर्श शब्द 13 अर्थों में विद्यमान है, उनमें से प्रकृत में किस अर्थ से प्रयोजन है और किस अर्थ से प्रयोजन नहीं है, अथवा वे 13 अर्थ कौन है, ऐसा प्रश्न करने पर स्पर्श शब्द के 13 अर्थों का कथन करके, वो जो निक्षेप 13 प्रकार से बताएंगे, उनमें से अप्रकृत अर्थों का, अप्रकृत ने जो हमें नहीं चाहिए, जो हमें विवक्षित नहीं है, निराकरण करके यानी उसको रूल आउट करेंगे, प्रकृत अर्थ का प्ररूपण करने के लिए हमें जो अपेक्षित है अर्थ उसका प्ररूपण करेंगे, यह स्पर्श निक्षेप अधिकार आया है। अब उसके नाम बताएंगे, यानी वो निक्षेप 13 प्रकार से, ऊपर सूत्र में 13 सभी है फास निक्षेवे, नाम फासे, ठवण फासे, दव फासे, एय खेत फासे, अनंतर खेत फासे, देश फासे, तय फासे, सव फासे, फास फासे, कम्म फासे, बंध फासे, भव्य फासे, चेदी। नाम यहाँ नीचे देखते स्पर्श निक्षेप 13, अच्छा इसमें नहीं आया, हमारे में नहीं लिखा है। भव्य फासे के बाद क्या है, भाव, भाव फासे, ती, ती लिखा है क्या, का चेदी है, यानी भव्य फांसे के बाद भाव फांसे रह गया है ना, पुराने पुस्तकों में ऐड करना, भव्य फांसे के बाद सूत्र में रह गया हमारे, ना 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 देखो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, नीचे हिंदी में 13 है, हाँ पर भाव डालने पर 13 हो गए, एक 1 2 3 4 5 9 10 नहीं नहीं 12 ही है, भव्य फांसे होते 12 है और ये भाव फांसे डालना पड़ेगा, प्राकृत में भाव फांसे लिखा नहीं बस। हाँ अरे वो बात उसकी बात नहीं है, नाम एक रह गया है, नाम डालना रह गया उनका पुराने पुस्तकों में। बताए है नाम एक कम। हाँ अभी हमने वहां लिखा, अभी नीचे उसका अर्थ देखते हैं। स्पर्श निक्षेप 13 प्रकार का है, नाम स्पर्श, स्थापना स्पर्श, द्रव्य स्पर्श, एक क्षेत्र स्पर्श, अनंतर क्षेत्र स्पर्श, देश स्पर्श, त्वक स्पर्श, सर्व स्पर्श, स्पर्श स्पर्श, कर्म स्पर्श, बंध स्पर्श, भव्य स्पर्श और भाव स्पर्श। हमेशा हम नाम स्थापना द्रव्य भाव कहते हैं, उसके बीच में बाकी भी ले लिए उन्होंने। इस प्रकार शब्द स्पर्श शब्द 13 अर्थों में उपलब्ध होता है। स्पर्श शब्द इन 13 अर्थों में ही पाया जाता है, ऐसा कोई निश्चय नहीं, और भी अन्य होंगे अर्थ, किंतु इस सूत्र द्वारा स्पर्श शब्द के अर्थों का मात्र दिशा ज्ञान कराया गया है। फॉर एग्जाम्पल करके कितने हो सकते बताया है, और छेदी करके वो और भी हो सकते हैं। तो बस ये निक्षेप का ये बताया। अभी आगे बताते हैं, फासण विभाषण दाए, स्पर्श नय विभाषणता का अधिकार है। हाँ 16 अनुयोग द्वारों में से दूसरा बराबर है, वहां अगर आपको नंबर डालने हैं हाँ तो उसमें से हम एक एक का अनुयोग द्वार को देखेंगे। बाद में कौन से नए का कौन सा निक्षेप विषय है वगैरह शायद बताएंगे तो बताएंगे, देखेंगे अभी कैसे उनकी प्ररूपणा होती है। वहां तो हमने 11, 12, 13 हाँ वो सूत्र में नंबरिंग करेंगे तो आगे रेफरेंस को हमको काम आएगा। अब यहाँ 2 नंबर का अधिकार, पहला वो निक्षेप वाला था वो 1 नंबर का अधिकार था, अधिकार का वो अनुयोग द्वार को एक ही बात है। अब कहते हैं फास नये विभाषण दाए, स्पर्श नये विभाषणता का अधिकार है। स्पर्श का नये द्वारा विशेष व्याख्यान करना स्पर्श नये विभाषणता कहलाता है, यानी अलग अलग नयों से उसका अर्थ करना व्याख्यान करना उसका यहाँ अधिकार है, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। शंका वो श के ऊपर बिंदी लगा लो। 13 प्रकार के निक्षेपों का निर्देश तो किया पर उनका अर्थ न कहकर पहले स्पर्शों का नये द्वारा विशेष व्याख्यान क्यों किया जा रहा है, क्योंकि निक्षेपों को विस्तार से बताना चाहिए थे, बीच में नयों की बात क्यों शुरू की, यह प्रश्न है। समाधान, यह कोई दोष नहीं है क्योंकि नये द्वारा विशेष व्याख्यान किए बिना निक्षेपार्थ का कथन करना संभव नहीं है। निक्षेप शब्द का व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ है, निक्षेप शब्द कैसे तैयार हुआ तो कहते हैं निश्चये क्षिपति इति निक्षेप, यानी जो किसी एक निश्चय पर पहुंचाता है उसे निक्षेप कहते हैं। निक्षेप का अच्छा अर्थ किया है। Page 3 किसी एक निश्चय तक पहुंचाता है। हाँ अभी हम यहाँ देखते हैं अपने Page 3 पर नीचे से तीसरी लाइन कि जो किसी एक निश्चय पर पहुंचाता है उसे निक्षेप कहते हैं, परंतु निक्षेप नए विभाषणता अधिकार का कथन किए बिना संशय अनध्यवसाय और विपर्य ज्ञान में स्थित जीवों को, यानी कौन से हो मिथ्या ज्ञानी, संशय विपर्य अनध्यवसान ये क्या है, मिथ्या ज्ञान के अलग अलग प्रकार है, भेद है। तो कहते हैं कि निक्षेप नए विभाषणता निक्षेप भी चाहिए और न विभाषणता ही, तो उसको वहाँ यानी अज्ञानी जीवों को वहाँ से हटाकर किसी एक निश्चय में स्थापित करने में समर्थ नहीं है। पहले क्या बताया था, जो निक्षेप जो है वो निश्चय पर पहुंचाता है, परंतु कहते जो निक्षेप है वह नए विभाषणता का अधिकार किए बिना वो निक्षेप जो है वो निश्चय में स्थापित करने में समर्थ नहीं है। समझ में ना, वो जो निक्षेप शब्द बाद में डालते हैं तो इसका अर्थ ज्यादा क्लियर होगा। अभी मैं निक्षेप शब्द बाद में पढ़ूंगी, परंतु नए विभाषणता अधिकार का कथन किए बिना संशय अनध्यवसाय और विपर्य ज्ञान में स्थित जीवों को वहां से हटाकर किसी एक निश्चय में स्थापित करने में निक्षेप समर्थ नहीं है। ऐसा अगर हम पढ़ते हैं तो उसका और ज्यादा क्लियरिटी होती है। क्योंकि निक्षेप और नए विषांत साथ साथ पढ़ने से वो क्लियरिटी नहीं हो रही है। यानी निक्षेप को निश्चय तक पहुंचाने के लिए नई विभाषणता का वर्णन करना जरूरी है। उसके बिना, जरा सुनो सुनो, उसके बिना समर्थ नहीं है। किसके बिना? नहीं, नए विभाषणता बिना नयों का आपको मालूम नहीं होगा तो निक्षेप उसका निश्चय तक पहुंचने के लिए समर्थ नहीं है, ये कहते हैं। क्यों? मिथ्या दृष्टि जो है उसका संशय विपर्य वगैरह दूर करना है तो उसको दूर करने के लिए निक्षेप कार्यकारी है, परंतु निक्षेप तभी कार्यकारी है जब वो नए की बात जानेगा। नए का वर्णन किए बिना अकेला निक्षेप उसका अज्ञान दूर नहीं कर सकता, ये कहना चाहते हैं। क्योंकि पेज नंबर 4 पर आना, ऐसा देखा नहीं जाता, क्योंकि अलग अलग नयों से अलग अलग निक्षेपों का यहाँ कथन आता है तो उसको सही जानना चाहिए। इसलिए पहले नए विभाषणता अधिकार का कथन करते हैं। यानी जब हमने अनुयोग द्वार की बात की या अधिकारों की बात की तो पहले निक्षेप अधिकार बताएं और बाद में नए विभाषणता, परंतु निक्षेपों के केवल नाम बताए, अब नयों का वर्णन करके फिर कौन से नए से कौन से निक्षेप वगैरह होते उसकी चर्चा करेंगे। कहा भी है ऊपर जो एक नंबर का जो गाथा श्लोक जो है श्लोक है उसको पढ़ेंगे। प्रमाणने निक्षेपैर्योर्थो नाभि समीक्षते युक्तम चायुक्तवत् भाति तस्यायुक्तम च युक्तवत्। क्या कहते हैं? जिस पदार्थ का यो अर्थो प्रत्यक्षादि प्रमाणों द्वारा, ये प्रत्यक्षादि प्रमाण क्या होते हैं? हाँ, प्रत्यक्ष प्रमाण और परोक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण तो केवल ज्ञान है, और फिर एक देश प्रत्यक्ष अवधि मन पर ही है तो केवल ज्ञान को प्रत्यक्ष लिखे हैं, या प्रत्यक्ष प्रमाण जिसको हम प्रत्यक्ष हमें कोई बातें देखने में आती उसको भी कहते हैं, जिसको सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष कहेंगे, परंतु उसको भी प्रमाण में ले लिया है, वो परोक्ष है एक्चुअली। तो परोक्ष के दो भेद होते हैं, परोक्ष मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान। मति ज्ञान के कितने भेद हो गए? 5 बोलो। वो नहीं, सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष, स्मृति प्रत्यभिज्ञान, तर्क और अनुमान, ये आगम, वो उसका भेद नहीं मति ज्ञान का। आगम प्रमाण ये श्रुत ज्ञान का भेद है। मति ज्ञान में बाकी है कौन से? सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष, स्मृति प्रत्यभिज्ञान, तर्क और अनुमान, और जो श्रुत ज्ञान है वो आगम परोक्ष में आता है, यानी वो तो प्रमाण है, आगम प्रमाण जिसको कहेंगे। देखो देखो सामव्यवहार, ये सब प्रमाण है, क्योंकि अब सम्यक ज्ञान की बात चल रही है। मति ज्ञान जो प्रमाण ज्ञान है उसकी बात है यहाँ पर। प्रमाण के भेद हमने देखे ना, प्रत्यक्ष और परोक्ष। प्रत्यक्ष तो जो केवल ज्ञानी ने जाना है तो प्रत्यक्ष है ही, और परोक्ष में मति और श्रुत ज्ञान लेना। मति ज्ञान में क्या क्या लेना? मति ज्ञान में हाँ, साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष जो इंद्रिय ज्ञान है, जो हम जब कहते कि मैंने प्रत्यक्ष सुना, मैंने प्रत्यक्ष देखा, वो साम्यवहारिक प्रत्यक्ष, फिर स्मृति, प्रत्यभिज्ञान। अभी आप थी ना वहां, मैंने लिया था ये सब। हाँ, तर्क और अनुमान, ये पांच तो इसके हो गए मति ज्ञान के भेद। और श्रुत ज्ञान वो आगम प्रमाण है। अभी हम पढ़ रहे थे, देखो क्या कहा। जिस पदार्थ का प्रत्यक्षादि प्रमाणों के द्वारा, नैगमादि नयों के द्वारा, यानी वस्तु को प्रमाण, नय और निक्षेप से अच्छी तरह से जानेंगे तो उसका निश्चय होगा। तो कहते कि प्रत्यक्षादि प्रमाणों के द्वारा, यानी प्रमाण ज्ञान के द्वारा उसको जानना है, नैगमादि नयों के द्वारा और नामादि निक्षेपों के द्वारा सूक्ष्म दृष्टि से विचार नहीं किया जाता, वह पदार्थ युक्त होते हुए भी अयुक्त सा प्रतीत होता है। यानी वो सही है, संगत है, परंतु वो बराबर प्रतीत नहीं होता, क्योंकि उसका हमने प्रत्यक्ष जो, यानी जिसको हम कहें ना, प्रमाण के द्वारा, नय के द्वारा और निक्षेप के द्वारा उसका सही नहीं जाना है। और अयुक्त होते हुए भी युक्त सा प्रतीत होता है, वो ठीक यथार्थ भी यथार्थ जैसे लगता है। हमें लगना बात अलग है और वो चीज होना अलग बात है। इसलिए कोई भी जो वस्तु, कोई भी विषय है, प्रमाण, नय और निक्षेपों के द्वारा अच्छी तरह से उसका सही ज्ञान होना आवश्यक है। कहते कौन है वो के फासे इच्छा दी, कौन नय किन स्पर्शों को स्वीकार करता है, यानी कौन से नय का विषय कौन सा स्पर्श है, ये यहाँ बताएंगे। शंका, यहाँ और किन स्पर्शों को नहीं स्वीकार करता है, ऐसी पृच्छा क्यों नहीं की। क्या कहते हैं वहां, क्या प्रश्न क्या पूछा था, कौन से नय किसको स्वीकार करता है, तो ऐसा क्यों नहीं लिखा किसको स्वीकार नहीं करता करके। तो उसके समाधान में कहते हैं, क्योंकि इन स्पर्शों को स्वीकार करता है ऐसा ज्ञान हो जाने पर शेष को नहीं स्वीकार करता, यह उपदेश के बिना ही जाना जा सकता है, उसको कहने की जरूरत नहीं है। अब उसको कौन किसको स्वीकार करता है वो बताएंगे। ये उन्होंने गाथा के रूप में बताया क्या, सौवे ए दे फासा बोधव्वाहोन्तिणे गमनयस् णेच्छदि यबन्ध भवियं व्यवहारो संगहणोय। इस गाथा सूत्र का अर्थ कहते नहीं, वो ऊपर हिंदी में पढ़ेंगे। सात नंबर, नैगम नय के ये सब स्पर्श विषय होते ऐसा जानना चाहिए, यानी नैगम नय इन सबको विषय करता है, किंतु व्यवहार नय और संग्रह नय बंध स्पर्श और भव्य स्पर्श को स्वीकार नहीं करते, बाकी सबको करते। कौन से, वो हमने देखा था ना, नाम है, स्थापना है, द्रव्य है, उसकी बात है। तो नैगम सबको विषय करता है, बंध स्पर्श और भव्य स्पर्श ये व्यवहार नहीं, व्यवहार ने और संग्रह ने ये बंध स्पर्श और भव्य स्पर्श को नहीं स्वीकार करते, बाकी सबको स्वीकार करते हैं। शंका, बंध स्पर्श इन दोनों नयों का विषय क्यों नहीं है। देखो, अच्छा अच्छा, नैगम ने के सब स्पर्श विषय होते ऐसा जानना चाहिए, किंतु व्यवहार ने और संग्रह ने बंध स्पर्श और भव्य स्पर्श को स्वीकार नहीं करते। हाँ, उसके नीचे इस गाथा सूत्र का अर्थ कहते, यथा असंग्रहिक नैगम नय के ये तेरह ही स्पर्श विषय होते हैं ऐसा यहाँ जानना चाहिए। अभी बराबर है ना, पहले जो रह गया था वो पढ़ रही थी मैं, क्योंकि यह नय सब नयों के विषयों को स्वीकार करता है, क्योंकि नय यानी वो तो नयगम नयकम वो सबको स्वीकार करता है। व्यवहार नय और संग्रह नय बंध स्पर्श और भव्य स्पर्श को नहीं स्वीकार करते, जो ऊपर लिखा था वही वाक्य यहाँ पर भी है। शंका फिर पूछते हैं, बंद स्पर्श इन दोनों नयों का विषय क्यों नहीं है? कौन से दोनों हैं? व्यवहार नय और संग्रह नय। बंध स्पर्श को क्यों नहीं स्वीकार करते, वो विषय क्यों नहीं है? समाधान, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि इन दोनों नयों की दृष्टि में उसका कर्म स्पर्श में अंतर्भाव हो जाता है। यथा कर्म स्पर्श दो प्रकार का है, कर्म स्पर्श और नो कर्म स्पर्श। बंध स्पर्श का उन दोनों में ही अंतर्भाव होता है, क्योंकि इन दोनों के सिवाय बंध नहीं पाया जाता, अथवा बंध स्पर्श है ही नहीं, क्योंकि बंध और स्पर्श इन दोनों शब्दों में अर्थभेद नहीं पाया जाता। यदि कहा जाए कि बंध के बिना भी लोह और अग्नि का स्पर्श देखा जाता है, इसलिए बंध से स्पर्श भिन्न है, तो ऐसा भी कहना ठीक नहीं है, क्योंकि संयोग संबंध और समवाय संबंध के बिना स्पर्श स्वतंत्र रूप से नहीं पाया जाता। देखो, इसका एक विशेषांक कहकर हमको समझा रहे हैं। यहाँ यह प्रश्न है कि बंध स्पर्श संग्रहने और व्यवहारने का विषय क्यों नहीं है। इस प्रश्न का दो प्रकार से समाधान किया है। प्रथम तो यह बताया है कि बंध स्पर्श का कर्म स्पर्श में अंतर्भाव हो जाता है, क्योंकि कर्म कहने से कर्म का बंध ही तो हो रहा है ना। कर्म स्पर्श के कर्म और नौकर्म, ये दो भेद है। लोक में और आगम में बंध शब्द द्वारा इन्हीं का ग्रहण होता है, इसलिए बंध स्पर्श का कर्म स्पर्श में अंतर्भाव किया गया है। पर बंध शब्द का जो अर्थ है वही अर्थ स्पर्श शब्द से भी ध्वनित होता है, यह देखकर दूसरा उत्तर यह दिया है कि बंध स्पर्श स्वतंत्र वस्तु ही नहीं है, इसलिए उसे व्यवहार ने और संग्रह ने का विषय नहीं माना जाता। यह बंध स्पर्श के बारे में खुलासा हुआ। अब शंका, भव्य स्पर्श को उक्त दोनों का विषय क्यों नहीं कहा गया? उसका समाधान, भव्य यानी होने योग्य ऐसा कुछ होगा ना। एक तो विष, यंत्र, कूट और पिंजरा आदि का विवक्षित द्रव्यों के साथ वर्तमान में स्पर्श नहीं उपलब्ध होता, इसलिए भव्य स्पर्श को, भव्य का अर्थ होता है क्या, होने योग्य यानी होगा, पर अभी नहीं है वर्तमान में, इसलिए भव्य स्पर्श को उक्त दोनों नयों का विषय नहीं कहा जाता। यदि कहा जाए दो का स्पर्श हुए बिना भी स्पर्श संज्ञा बन जाएगी, सो भी बात नहीं है, क्योंकि उसका संबंध आए बिना, उसका जो कुछ है स्पर्श हुए बिना उसको स्पर्श नहीं कह सकते, सो भी बात नहीं है, क्योंकि ऐसा मानने में विरोध आता है। यानी दोनों का स्पर्श हुआ नहीं और उसको स्पर्श कहा, तो कहते ये नहीं हो सकता। दूसरे, अस्पृष्ट काल में जब तक स्पर्श नहीं हुआ उसको अस्पृष्ट काल कहा, स्पर्श है नहीं, और स्पृष्ट काल में उसका कर्म स्पर्श, नो कर्म स्पर्श, सर्व स्पर्श और देश स्पर्श में अंतर्भाव हो जाता है, इसलिए भी भव्य स्पर्श को व्यवहारने और संग्रहने का विषय नहीं माना, ऐसा यहाँ जानना चाहिए। बताए ना ऊपर, विषय यंत्र कूट और पिंजरा आदि का विश्वक्षित द्रव्यों के साथ वर्तमान में स्पर्श उपलब्ध नहीं हुआ है। किसी ने विष पिया नहीं, उसको उसके साथ स्पर्श नहीं हुआ। यंत्र कूट कूट समझते ना, उसके पिंजरा, ये जो पंछी वगैरह के लिए पकड़ने के लिए कुछ अलग अलग जो बातें, यंत्र कूट पिंजरा आदि का ऊपर, अभी तो उसके साथ वो कॉन्टेक्ट में नहीं आया है, उसका स्पर्श नहीं हुआ है, उससे बंधा नहीं है वो, तब तक उसको स्पर्श नहीं कह सकेंगे। भव्य का अर्थ होता है होने योग्य, अभी हुआ नहीं है, होने योग्य है। भव्य का अर्थ होता है होने योग्य, बस इतना ही, वो भव्य सिद्धि वो वाले नहीं है, भव्य सिद्धि उसको कहते जो सिद्ध होने योग्य है। भव्य अभव्य जीवों के भेद है उसकी बात यहाँ नहीं हो रही है। स्पर्श को भव्य कह रहे हैं, भव्य स्पर्श निस्पर्श वो होने वाला है, होने योग्य है। तथा नीचे से तीसरे लाइन उस पैराग्राफ की, भव्य स्पर्श स्थापना स्पर्श में अंतर्भूत हो जाता है इसलिए संग्रह ने उसे स्वीकार नहीं करता, क्योंकि वह यह है ऐसा अध्यारोप किए बिना वर्तमान काल में यंत्रादिक में स्पर्श व्यवहार नहीं बन सकता। फिर इसका विशेष अर्थ, भव्य स्पर्श का स्वरूप आगे बतलाने वाले हैं, उससे स्पष्ट है कि भव्य स्पर्श में वर्तमान कालीन स्पर्श विवक्षित न होकर स्पर्श की योग्यता ली गई है और व्यवहार ने तथा संग्रह ने ऐसे स्पर्श को स्वतंत्र रूप से ग्रहण नहीं करते। हाँ, नैगम ने तो वो भविष्य में होने वाले को भी स्वीकार करते, इसलिए यहाँ भव्य स्पर्श व्यवहार ने और संग्रह ने का विषय नहीं है यह कहा गया है। हाँ, 34 पेज पर आगे आने वाला है सब ना, वो सब आएगी। और यही वो विषकूट यंत्र वगैरह जीव कांड में वो तो मिथ्या ज्ञान के प्रकरण में लिए थे, बिना सिखाए ऐसे कुछ हो करता है, मति ज्ञान के मिथ्या ज्ञान के कुमति ज्ञान में बताए थे ये। देख लो वहां से 34 पेज निकालो। वहां देखो ना, ये 30 का हम डायरेक्ट अर्थ देखते नहीं अब, यथा लिखा है ना, भव्य स्पर्श का अधिकार यथा विष कूट यंत्र पिंजरा कंदक और पशु को फंसाने का जाल आदि तथा इनके करने वाले और इन्हें इच्छित स्थान में रखने वाले स्पर्शन के योग्य होंगे, अभी उन्हें स्पर्श नहीं करते तो वो भव्य स्पर्श है, भव्य ने होने योग्य। नीचे देखो, विष तो सुप्रसिद्ध है, कौवा और चूहा आदि के धरने के योग्य जो बनाया जाता है उसे कूट कहते हैं, सिंह और व्याघ्र आदि के धरने के लिए बनाया जाता है और जिसके भीतर बकरा रखा जाता है उसे यंत्र कहते हैं, तीतर लाव आदि पकड़ने के लिए जो अनेक छोटी छोटी पंचे लेकर बनाया जाता है उसे पिंजरा कहते हैं, हाथी के पकड़ने के लिए जो वारीबंद बारी ने वो रस्सों से बनाते हैं बनाया जाता है उसे कंदक कहते हैं, अथवा हरिण और सुअर आदि के मारने के लिए जो फंदा तैयार किया जाता है उसे कंदक कहते हैं, फंदा यानी उसे गांठ लगा के वो जो ऐसे फेंकते हैं और उसको पकड़ते हैं। वग्गुरा प्रसिद्ध ही है, वग्गुरा किसको कहते पता नहीं, इच्छित वस्तु के स्पर्शन अर्थात पकड़ने के लिए इत्यादि द्रव्यों का रखना भव्य स्पर्श कहलाता है, तथा इन यंत्रादि के करने वाले और उद्दीदारो उद्दी ऊपर क्या लिखा है, कत्तारो समुद्यारो भव्यो समुद्यारो यानी उद्दीहारो उद्दीदारो अर्थात इन यंत्रादि को इच्छित स्थान पर रखने वाले भी भव्य स्पर्श कहलाते हैं, क्योंकि यहाँ कारण में कार्य का उपचार किया गया है आदि। नीचे पढ़ते, यंत्रादि को स्पर्श संज्ञा किस निमित्त से प्राप्त होती है ऐसा पूछने पर कारण का कथन करने के लिए कहा है, भवियो फुसनदाये नोय पुनताव तम फुसदी, अर्थात जो स्पर्शन के योग्य तो है परंतु उस इच्छित वस्तु को स्पर्श नहीं करता उसकी भव्य स्पर्श संज्ञा यानी होने वाला है, अभी नहीं है, विशेषार्थ उसी का जो पर्याय भविष्य में होने वाली होती है उसे भव्य या भावी कहते हैं। यहाँ स्पर्श का प्रकरण है, इसलिए भव्य स्पर्श का यह अर्थ है कि जो भविष्य में स्पर्श पर्याय से युक्त तो होगा वह भव्य स्पर्श है। इसके उदाहरण स्वरूप सूत्र में विषव यंत्रादिक पदार्थ लिए गए हैं, इन पदार्थों का निर्माण मुख्यतया अन्य जीवों को पकड़ने के लिए किया जाता है, इसलिए इनकी बहुवे स्पर्श संज्ञा होती है। इसी प्रकार कारण में कार्य का उपचार करके इन विषादिक के निर्माता और इन्हें इच्छित स्थान पर रखने वाले भी बहुवे स्पर्श कहलाते हैं। द्रव्य निक्षेप में, द्रव्य निक्षेप ने आगामी होने वाली पर्याय को भी पकड़ता है ना, आगे होने वाली पर्याय और उसके कारण दोनों का ग्रहण होता है, उसी प्रकार यहाँ भी समझना चाहिए। अब आते अपने पेज नंबर 5 पर, ये नीचे का विशेषार्थ फिर पढ़ते हैं। भव्य स्पर्श का स्वरूप आगे बतलाने वाले वो पेज 34 पर हमने पढ़ लिया। उससे स्पष्ट है कि भव्य स्पर्श में वर्तमान कालीन स्पर्श विवक्षित न होकर स्पर्श की योग्यता ली गई है, और व्यवहार ने तथा संग्रह ने ऐसे स्पर्श को स्वतंत्र रूप से ग्रहण नहीं करते। या तो सबको इकट्ठा करेंगे तो संग्रह नहीं होगी, उसको भेद करके करेंगे तो व्यवहार नहीं होगा। इसलिए यहाँ भव्य स्पर्श व्यवहार नहीं और संग्रह नहीं का विषय नहीं है, यह कहा है। अब आते हैं पेज नंबर 6 पर, 8 नंबर का जो है गाथा सूत्र ही है उसको। एयक्षेत्तमनंतर बंधम भवयम चणेश्च दुच्चुसुदो नामम च फास फासम भाव फासम च सद्धनो। रुजुसूत्र, वो रु ह्रस्व चाहिए, दीर्घ हुआ है, वो डबल वाटी लगा ना, सिंगल वाटी चाहिए थी। रुजुसूत्र अभी यह नए का नाम है, वो किसको किसको स्वीकार करता है उसकी बात बताएंगे। रुजुसूत्र एक क्षेत्र स्पर्श, अनंतर स्पर्श, बंध स्पर्श और भव्य स्पर्श और स्थापना स्पर्श को भी स्वीकार नहीं करता, क्योंकि रुजुसूत्र नए है तो वर्तमान एक पर्याय को स्वीकार करता है। तो हमेशा हमने देखा था कि स्थापना को तो कभी स्वीकार नहीं करता, हमने डाला था क्योंकि स्थापना स्पर्श भी नहीं है। देखो यहाँ लिखा है पेज नंबर 7 पर नीचे विशेषार्थ, उसकी दूसरी लाइन ऊपर की, इसी प्रकार स्थापना स्पर्श भी नहीं है, है ना। हमेशा किसी भी विषय में रुजुसूत्र नए स्थापना को विषय करता ही नहीं, कि वो किसी द्रव्य की वर्तमान पर्याय को विषय करता है, तो यह वह है ये कल्पना उसमें नहीं होती। हाँ, ये हमने डाला था, और स्थापना स्पर्श को भी वहां उन्होंने नहीं डाला था, उन बाद में उन्होंने मूल उसमें बताया था। प्राकृत में भी देखा तहा ठवण फासो भी नथी, 7 पेज पर प्राकृत के नीचे से दूसरी लाइन, क्योंकि वो तो उनको गाथा में बताने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि रुजुसूत्र ने कभी भी स्थापना को स्वीकार नहीं करता है। पर हमने अपने समझने के लिए डाला है क्योंकि बाद में डालने वाले फिर से। रुजुसूत्र एक क्षेत्र स्पर्श, अनंतर स्पर्श, बंध स्पर्श और भव्य स्पर्श को, और हमने डाला है और स्थापना स्पर्श को भी स्वीकार नहीं करता, किसको नहीं करता उसकी बात। किंतु शब्द ने नाम स्पर्श, स्पर्श शब्द स्पर्श और भाव स्पर्श को ही स्वीकार करता है। शब्द ने नाम स्पर्श, स्पर्श स्पर्श और भाव स्पर्श को ही स्वीकार करता है। अब इस गाथा सूत्र का अर्थ कहते, यथा क्षी धातु का अर्थ निवास करना है, इसलिए क्षेत्र शब्द का यह अर्थ है जिसमें पुद्गल आदि द्रव्य निवास करते हैं उसे क्षेत्र अर्थात आकाश कहते हैं। यह जो क्षेत्र, एक जो क्षेत्र वह एक क्षेत्र है, नहीं नहीं फिर से तीसरी लाइन, एक जो क्षेत्र वह एक क्षेत्र कहलाता है, और क्षेत्र किसको कहा, जहां पुद्गल आदि द्रव्य निवास करते हैं, यानी आकाश को यहाँ क्षेत्र कहा। इस प्रकार इस व्युत्पत्ति का आलंबन लेकर यदि एक आकाश प्रदेश ग्रहण किया जाता है तो एक क्षेत्र स्पर्शन नहीं बनता, क्योंकि अन्य द्रव्यों का अपने सिवाय अन्य द्रव्यों में निवास नहीं पाया जाता, और सभी पदार्थ अपने स्वरूप में निविष्ट ही उपलब्ध होते हैं। ऐसा नियम है, जो जिसकी स्वरूप उपलब्धि का कारण होता है वही उसका आधार माना जाता है। अपनी भाषा में प्रत्येक द्रव्य स्वयं अपना आधार है, दूसरे द्रव्य के आधार से कोई द्रव्य नहीं है, ये बात यहाँ बताना चाहते हैं। इसलिए आकाश के प्रदेश को यहाँ क्षेत्र नहीं कह सकते, एक क्षेत्र नहीं बनता, ऐसा कहा। हाँ, एक आकाश प्रदेश ग्रहण किया जाए तो उसे एक क्षेत्र स्पर्श नहीं कहते, ये क्या कहा उन्होंने। अब यदि कहा जाए कि इतर पदार्थ भी उसमें निवास करता है, तो इस पर हमारा कहना यह है, आकाश द्रव्य से शेष द्रव्यों की स्वरूप उपलब्धि तो होती नहीं है, क्योंकि एक द्रव्य से दूसरे द्रव्य की स्वरूप की उपलब्धि नहीं होती, क्योंकि निष्पन्न पदार्थों का ही आकाश में अवस्थान देखा जाता है, यानी कोई नए तो तैयार होते नहीं है, जो है उनका वहां अवस्थान देखा जाता है। इसलिए आकाश को क्षेत्रपना नहीं प्राप्त होने से एक क्षेत्र स्पर्श नहीं बनता, ये उसकी चर्चा चल रही है अभी। अब कहते जिसमें खियंती निवसंती, अर्थात निवास करते वह क्षेत्र है, इस व्युत्पत्ति के अनुसार, यानी अलग अलग क्या है, पहले क्या कहा, क्षी धातु का अर्थ निवास करना, और उसके आधार से उन्होंने एक क्षेत्र किसको कहना उसकी परिभाषा बनाई। अब कहते क्षी का अर्थ भी बताएं, खियंती निवसंती अर्थात निवास करते वह क्षेत्र है, इस व्युत्पत्ति के अनुसार यदि वस्तु का अपना स्वरूप ही ग्रहण किया जाता है तो भी एक क्षेत्र स्पर्श नहीं बनता, क्योंकि ऐसा मानने पर एक क्षेत्र का अर्थ होता है एक स्वरूप, और ऐसी अवस्था में उसमें द्वित्व नहीं बन सकता। यदि कहा जाए द्वित्व, क्योंकि स्पर्श होने के लिए दो पदार्थ चाहिए, एक ही में करो तो घटित नहीं होगा। यदि कहा जाए एक में भी स्पर्श की उपलब्धि हो जाएगी सो भी बात नहीं है, क्योंकि उसकी दो आदि द्रव्यों के रहने पर ही उपलब्ध होती है। किसकी, स्पर्श। स्पर्श कब कहेंगे, दो या अधिक द्रव्य हो गए तो उसको स्पर्श कहेंगे। इसी प्रकार अनंतर क्षेत्र स्पर्श भी नहीं बनता, क्योंकि क्षेत्र नाम की कोई वस्तु ही नहीं ठहरती। यदि आकाश द्रव्य को क्षेत्रपना सिद्ध हो तो सांतर क्षेत्र और अनंतर क्षेत्र भी सिद्ध हो सकते हैं, परंतु पूर्वोक्त न्याय से, ये जो पहले बताए न्याय, वो आकाश के क्षेत्रपना सिद्ध नहीं होता। इसलिए अनंतर क्षेत्र की सिद्धि न होने से अनंतर क्षेत्र स्पर्श भी नहीं बनता, ऐसा यहाँ स्वीकार करना चाहिए। यदि स्वरूप अर्थ में विद्यमान क्षेत्र शब्द लिया जाता है तो भी अनंतर रह गया, अनंतर क्षेत्र नहीं बनता, क्योंकि यह इसके अनंतर है, इस वचन प्रवृत्ति का कोई कारण नहीं पाया जाता, क्योंकि स्वरूप को ही हमने क्षेत्र कहा तो उसके स्वरूप के बाद यह होता है, ऐसा कैसे कुछ होगा ही नहीं, ऐसा वचन प्रवृत्ति नहीं होगी। यदि कहा जाए अत्यंत पृथकभूत पदार्थों का अंतर नहीं पाया जाता सो भी बात नहीं है, क्योंकि ऐसा मानने में विरोध आता है। ये रुजु सूत्र ने किस किस को क्यों नहीं स्वीकार करता है, हमने बताया ना, एक क्षेत्र को नहीं करता, अनंत क्षेत्र को नहीं करता, बंध स्पर्श को, उसकी चर्चा चल रही है। अब आगे तीसरा पैराग्राफ, बंध स्पर्श भी नहीं है क्योंकि द्वित्व का त्याग कर एकत्व की प्राप्ति का नाम बंध है, परंतु एकत्व के रहते हुए स्पर्श नहीं पाया जाता। क्या कहा? दोनों एक हो गए फिर स्पर्श काहे का कहेंगे, जब तक दो है तब स्पर्श कहेंगे। अब बंध कहने से एक रूपता को प्राप्त हो गया, अभी उसको स्पर्श क्यों कहते हैं? यदि कहा जाए इस तरह तो सर्व स्पर्श के साथ व्यभिचार हो जाएगा, सो भी बात नहीं है, क्योंकि वहां पर एकत्व की प्राप्ति के बिना सब अवयवों द्वारा स्पर्श स्वीकार किया गया है। इसी प्रकार भव्य स्पर्श भी नहीं है, क्योंकि जब स्पर्श पर्याय ही उत्पन्न नहीं हुई, भव्य ने भावी और रुजु सूत्र ने तो वर्तमान पर्याय को स्वीकार करता है, तो स्पर्श पर्याय ही उत्पन्न नहीं हुई तब उसका वर्तमान काल में सद्भाव मानने में विरोध आता है। और यदि स्पर्श पर्याय उत्पन्न भी हो गई है तो उसका शेष स्पर्शों में अंतर्भाव देखा जाता है। दूसरे यानी दूसरा पॉइंट, वर्तमान काल के सिवाय शेष कालों का अस्तित्व भी नहीं पाया जाता, इसलिए भी भव्य स्पर्श नहीं बनता। इस नए को दूसरे कालों का स्वीकार नहीं, वर्तमान काल को स्वीकार है। ये रुजु सूत्र नय की अपेक्षा ये बात है। अभी आगे नहीं। इसी प्रकार स्थापना स्पर्श भी नहीं है, क्योंकि वह यह संकल्प के कारण अन्य स्वरूप नहीं हो सकता। यानी ये बात रुजु सूत्र नय को स्वीकार नहीं है। स्थापना नय जुदा है पर रुजु सूत्र यानी स्थापना निक्षेप जुदा है, वो रुजु सूत्र नय स्थापना निक्षेप को स्वीकार नहीं करता। वर्तमान काल के साथ स्थापना निक्षेप का विरोध भी है। विशेषार्थ, यहाँ युक्तिपूर्वक यह बतलाया गया है कि रुजु सूत्र नय एक क्षेत्र स्पर्श, अनंतर क्षेत्र स्पर्श, बंध स्पर्श, भव्य स्पर्श और स्थापना स्पर्श को क्यों नहीं स्वीकार करता। सार यह है कि रुजु सूत्र नय का विषय न तो द्वित्व है और न अतीत अनागत काल है, किंतु इन एक क्षेत्र स्पर्श आदि की सिद्धि के लिए कहीं तो द्वित्व, क्योंकि वो आकाश के साथ उसका निवास करना होता है तो दो पनागे ना, एक पदार्थ आकाश के आधार से रहता है या उसके स्पर्श है, तो कहते द्वित्व चाहिए, और कहीं अतीत अनागत काल को स्वीकार करना पड़ता है तभी इनका सद्भाव बनता है। यही कारण है कि यहाँ पर रुजु सूत्र नय के विषय रूप से इन पांचों को अस्वीकार किया है। देखा ना हमने क्या क्या देखा, एक क्षेत्र, अनंतर क्षेत्र, अनंतर स्पर्श, एक क्षेत्र स्पर्श, अनंतर स्पर्श, बंध स्पर्श, भव्य स्पर्श और स्थापना स्पर्श। यद्यपि गाथा सूत्र में स्थापना स्पर्श का रुजु सूत्र नय के अविषय रूप से निर्देश नहीं किया गया है, किंतु स्थापना निक्षेप रुजु सूत्र नय का विषय न होने से, यानी कहीं पर भी किसी भी कथन में कोई भी विषय में जब हम रुजु सूत्र नय लगाते हैं, स्थापना निक्षेप उसका विषय होता ही नहीं, कभी भी नहीं होता। इसलिए स्थापना निक्षेप एक क्ष का क्षेप करो बराबर रुजु सूत्र नय का विषय न होने से स्थापना स्पर्श को रुजु सूत्र नय नहीं स्वीकार करता, यह अपने आप फलित हो जाता है। परंतु शब्द नय तो नाम स्पर्श को स्वीकार करता है, क्योंकि स्पर्श शब्द के बिना भाव स्पर्श के कथन करने का अन्य कोई उपाय नहीं है। नाम बताए बिना उसका ख्याल में नहीं आता है। वह स्पर्श स्पर्श को भी स्वीकार करता है, क्योंकि द्रव्य के बिना कर्कश आदि गुणों का अन्य गुणों के साथ संबंध देखा जाता है। भाव स्पर्श को भी वह स्वीकार करता है, क्योंकि ज्ञान से जिन कर्कश आदि गुणों को हम जानते हैं उनका वर्तमान काल में सद्भाव पाया जाता है। हमने क्या देखा था गाथा में, रुजु सूत्र किसको विषय नहीं करता उसकी बात देखी थी, परंतु शब्द नय किसको स्वीकार करता है वो भी बताया था। नाम को स्वीकार करता है, स्पर्श स्पर्श को और भाव स्पर्श को। यही बात यहां बता रहे हैं। अभी इसी का विशेष अर्थ, शब्द नय नाम निक्षेप, द्रव्य निक्षेप और भाव निक्षेप को स्वीकार करता है, इसी से यहाँ उक्त तीन स्पर्श शब्द नय के विषय रूप से निर्दिष्ट किए गए हैं। शब्द नय शेष स्पर्शों को स्वीकार नहीं करता, क्योंकि अपने विषय में उन स्पर्शों का अभाव है। इस प्रकार स्पर्श नय विभाषणता का कथन समाप्त हुआ। क्या कहते हैं, पहले उन्होंने निक्षेप के नाम बताए थे 13, उसके बाद बीच में नय विभाषणता डाल दी, नयगम नय सबको स्वीकार करता है, और व्यवहार और संग्रह नय ने किसको नहीं स्वीकार किया था, वो भव्य को नहीं स्वीकार किया था और बंधक को नहीं स्वीकार किया था। और फिर यह नयगम व्यवहार संग्रह फिर रुजु सूत्र की ये 5 को स्वीकार नहीं करता है, और शब्द ने स्वीकार करता है किसको, नाम को, स्पर्श स्पर्श को और भाव स्पर्श को, इन तीनों को स्वीकार करता है। और ये आखिर के तीनों शब्द ने के ही भेद है, रुजु शूद्र शब्द समभिरूढ़ और एवं भूत। अभी आगे देखते हैं। अब नाम स्पर्श निक्षेप का कथन करने के लिए आगे का सूत्र आया है। हमने जो पहले एक सूत्र देखा था ना कि 13 प्रकार के निक्षेप बताए थे, तो अभी वो 13 जो अलग अलग नाम है उसमें से एक पहला कौन सा था, नाम स्पर्श निक्षेप। देखो हमने शायद स्पर्श निक्षेप 13 प्रकार का है, पेज नंबर 3 पर था। हाँ, तो उसमें से नाम स्पर्श है। जो सो नाम फासो नाम सो जीवस्य वा अजीवस्य वा जीवाणम वा अजीवाणम वा जीवस्य च अजीवस्य च जीवस्य च अजीवाणम च जीवाणम च अजीवस्य च जीवाणम च अजीवाणम च जस्य नाम कीरदि फासेति सो सवो नाम फासो नाम। यहाँ 8 भंग बताए, क्योंकि जीव और अजीव का है ना, उसमें जीव एक हो सकता है अनेक होता है, अजीव भी एक होता है अनेक होते हैं, सिंगल सिंगल रखा यानी उसको अपने अपने में रखा, फिर उसमें उसका कॉम्बिनेशन लिया, एक जीव एक अजीव, एक जीव नाना अजीव, इस तरह से। अब ये बताएंगे यहाँ पर, जो वह नाम स्पर्श है वह एक जीव एक अजीव, नाना जीव नाना अजीव, एक जीव और एक अजीव, अभी 2 का कॉम्बिनेशन लेना, पहले सिंगल सिंगल 4 रखे, फिर एक जीव एक अजीव 5 नंबर का हुआ, फिर एक जीव और नाना अजीव 6 नंबर का हो गया, फिर नाना जीव और एक अजीव 7 हुए, और नाना जीव और नाना अजीव 8 हुए। इनमें से जिसका स्पर्श ऐसा नाम किया जाता है वह सब नाम स्पर्श है। ये नाम रखना है तो वो नाम स्पर्श हो गया। नाम के आधारभूत जीव और अजीव के एक और अनेक के संयोग से 8 ही भंग उत्पन्न होते हैं, अन्य भंग नहीं होते। इन 8 में जिसका स्पर्श ऐसा नाम रखा जाता है वह सब स्पर्श शब्द नाम स्पर्श कहलाता है। ये स्पर्श नाम रखना वो नाम स्पर्श हो गया। फिर शंका, एक ही स्पर्श शब्द में कर्मत्व और कर्तृत्व दोनों कैसे बन सकते हैं? समाधान, नहीं, क्योंकि लोक में सूर्य चंद्र खद्योत, खद्योत यानी वो तो जुगनू आता है ना, खद्योत, अग्नि मणि, खद्योत क्या लिखा है, ख ख, हाँ, अग्नि मणि और नक्षत्र आदि ऐसे अनेक पदार्थ है जिनमें उभय भाव देखा जाता है। उभय कौन सा? कर्म और कर्तृत्व। उसी प्रकार प्रकृति में जानना चाहिए, यानी वो प्रकाश और प्रकाश करने वाले ऐसा विशेषण। यहां स्पर्श शब्द को अन्य पदार्थ का वाचक न मानकर वही उसका वाच्य है और वही उसका वाचक माना गया है। इसी पर यह शंका की गई है कि एक ही स्पर्श शब्द एक साथ कर्ता और कर्म दोनों कैसे हो सकता है। इसका जो समाधान किया है उसका भाव यह है कि जिस प्रकार सूर्य और चंद्र आदि प्रकाशमान एक एक पदार्थ में युगपत प्रकाश्य प्रकाशक भाव देता, यानी वो प्रकाशक भी है स्वयं प्रकाशित भी, प्रकाश्य प्रकाशक, उसी प्रकार यहाँ एक स्पर्श शब्द को भी युगपत कर्ता और कर्म मानने में कोई बाधा नहीं आती। इस प्रकार नाम स्पर्श प्ररूपणा समाप्त हुई। अब नाम निक्षेप के बाद स्थापना निक्षेप हम करते हैं, उसके बाद बताएंगे यहाँ स्थापना स्पर्श को कहेंगे। जो सो ठवण फासो नाम सो कट्ठ कम्मे सुवा चित्त कम्मे सुवा पोत्त कम्मे सुवा लेप कम्मे सुवा लेन कम्मे सुवा सेल कम्मे सुवा गिह कम्मे सुवा भित्ति कम्मे सुवा दंत कम्मे सुवा भिंड कम्मे सुवा अखोवा वराड़ोवा जे चामन्ने एवं आदिया ठवणाए ठविज्जदि फासे ती सो सौवो ठवण फासो नाम। वह स्थापना स्पर्श है वह काष्ठ कर्म चित्र कर्म पोत कर्म लेप्य कर्म लयन कर्म शैल कर्म गृह कर्म भित्ति कर्म दंत कर्म और भेंड कर्म इनमें तथा अक्ष और वराड़क एवं इनको लेकर इसी प्रकार और भी जो एकत्व के संकल्प द्वारा स्थापना अर्थात बुद्धि में स्पर्श रूप से स्थापित किए जाते हैं वह सब स्थापना स्पर्श है। यानी कोई चीज बनाई उसमें हमने स्थापना की स्पर्श की, वो स्थापना स्पर्श हो गया। वो किस किस में हम स्थापना कर सकते हैं उसके लिए बहुत सारे उन्होंने अलग अलग बातें बताई, हम और भी कुछ सोच सकते हैं। दो पैर चार पैर बिना पैर और बहुत पैर वाले प्राणियों की काष्ठ में जो प्रतिमाएं बनाई जाती है उन्हें काष्ठ कर्म कहते हैं। ये दो पैर वाले तो समझते हैं मनुष्य है पंछी है, चार पैर वाले पशु है, बिना पैर वाले भी होते हैं क्यों कोई? हाँ वो मछली वगैरह ये सब बिना पैर वाले, और बहुत पैर वाले जो सेंटीपेड मल्टीपेड वो बहुत छोटे छोटे जो कितने होते हैं ना पैर, तो उनकी जो प्रतिमाएं बनाई है वो काष्ठ कर्म। जब यही चार प्रकार की प्रतिमाएं भित्ति यानी दीवारों में वस्त्र पोत कर्म कहा था ना, और दीवारों में चित्र भी बनाते हैं और स्तंभ खंबा वगैरह आदि पर रागवर्ता आदि वर्ण विषयों के द्वारा यानी अन्य अन्य कलर के द्वारा चित्रित की जाती है तब उन्हें चित्र कर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? अब ये कलर्स के द्वारा जो भींत पर या वस्त्रों पर स्तंभ आदि पर करते हैं तो उसको चित्र राग वर्त है नहीं, वो तो वेग वेग अलग अलग लाल रंग ऊपर क्या लिखा है रायवट्टादि वर्ण विशेष ही, यानी लाल पीला जो वर्ण है ना कलर विषयों की क्यों लिया एक मिनट वट्टादि वर्ण विशेष ही विशेषों के चाहिए विषयों के हुआ विशेषों के। नए पुस्तक में क्या लिखा है? विषयों के हुआ है विशेषों के चाहिए, शे अक्षर रह गया विशेषों के, ने हमारे में नहीं लिखा है विषयों के हुआ है विशेषों के। वर्ण विशेषण है जुदे जुदे वर्ण उन्हें चित्रकर्म कहते हैं। ये तो हमें तो समझाने की जरूरत नहीं है, जो हम चित्र जो निकालते हैं अलग अलग वर्णों के द्वारा, भिंतियों पर करेंगे, वस्त्रों पर निकालेंगे, अभी हम वो तो पेपर पर निकालेंगे, कुछ भी है ना, अभी इस जमाने में तो कुछ भी होते, पहले तो इनमें होते थे, इसलिए चित्रकर्म कहा। घोड़ा, हाथी, मनुष्य, स्त्री, वृक और वाघ आदि की वस्त्र विशेष में, वृक ने वो कोल्हा ना, वृक किसको कहते हैं, विशेष प्राणी, फॉक्स के लिए कहते ना वृक, हाँ वृक वही मराठी में कोल्हा कहते उसको, आदि की वस्त्र विशेष में उकीरी गई प्रतिमाओं को पोत कर्म कहते हैं। पोत करते हुए होता है कि वो वस्त्र में, वस्त्रों में वो तो प्रतिमाएं बनाते हैं, पोत कर, वो पोत पोत यानी वस्त्र का, वो अलग बात है। अब लेप्य कर्म यानी लेप देकर, मिट्टी, खड़िया और वालू आदि के लेप से जो प्रतिमाएं बनाई जाती है उन्हें लेप्य कर्म कहते हैं। अब ये जो मिट्टी के बनाते ना इन लोगों में कुछ, जो कुछ उनके उत्सव होते हैं, भगवान की मूर्तियां वगैरह जो मिट्टी में बनती है उसको लेप्य कर्म कहेंगे। शिला स्वरूप पर्वतों से अभिन्न जो प्रतिमाएं बनाई जाती है उन्हें लयन कर्म कहते हैं, जिसको हम लेनी कहते हैं। लेनी नहीं समझते, वो अजंठा एलोरा में क्या है, पर्वतों में उकीरी गई है ना, उनसे अभिन्न है। देखो प्रतिमाएं जो, हाँ तो इन्हें उसमें पत्थर में से उकेरी गई है, उससे अभिन्न है। पीछे उसके साथ 52 गजा की और वो ग्वालियर की है ना बड़ी बड़ी, हाँ वो कौन सा पर्वत, उसका नाम क्या, गोपाचल। पृथक पड़ी हुई शिलाओं में जो प्रतिमाएं बनाई जाती उन्हें शैल कर्म कहते हैं। जैसे हम भगवान की मूर्तियां बनाते हैं वो तो शैल कर्म, पत्थरों में से उनके बड़े बड़े उसमें से बनती है। गोपुरों के शिखरों से अभिन्न ईट और पत्थर आदि के द्वारा जो प्रतिमाएं चीनी जाती है उन्हें गृह कर्म कहते हैं। यानी जो मंदिरों के ऊपर जो शिखर वगैरह बनाते हैं ना तो उसी में वो बनाई जाती है। भित्ति से अभिन्न तृणों से जो प्रतिमाएं बनाई जाती है उन्हें भित्ति कर्म कहते हैं। हाथी के दांत में जो प्रतिमाएं उत्कीर्ण की जाती है उन्हें दंत कर्म कहते हैं। तथा भेंड अर्थात, ये कहीं बीच में छूट गया है, भेंड यानी वो तो एक व्हाइट लाइट पदार्थ ऐसा होता है, उसमें बहुत सारी चीजें बनाते हैं, तो भेंड से घड़ी गई प्रतिमाओं को भेंड कर्म कहते हैं। अभी आजकल तो वो तो थर्मोकोल वगैरह आजकल आया, परंतु वो पहले एक लाइट पदार्थ ऐसा आता था, बाहर का छिलका निकालते थे अंदर व्हाइट व्हाइट दिखता था, एकदम लाइट ऐसे वनस्पति का ही होता है, उसको भेंड कहते हैं। आगे देखो कहाँ गए, आदि शब्द से कांसा, तांबा, चांदी और सुवर्ण आदि द्वारा सांचे में ढाली गई प्रतिमाएं भी ग्रहण करनी चाहिए। इस प्रकार सद्भाव स्थापना के आधार का कथन किया। सद्भाव स्थापना यानी तदाकार स्थापना, यानी जो उन्होंने बताया ना, कोई मनुष्य है या कोई प्राणी है उनके आकार जैसे आकार यहाँ बनाए हैं तो उसको सद्भाव स्थापना कहते हैं। द्यूत कर्म की स्थापना में, अभी जो शतरंज वगैरह है ना तो उसमें तो उसको कोई हाथी और ऊंट ऐसे नाम दिए जाते हैं, तो द्यूत कर्म की स्थापना में जो जय पराजय की निमित्त भूत छोटी कौड़ियां और फांसे होते हैं उन्हें अक्ष कहते हैं। देखो ये बात नहीं है, शतरंज की बात अलग है, यहाँ की बात है, जो फांसो ऐसे डालकर वो 4 आए के 6 आए के 12 आए उसको हम गिनते हैं कौड़ी डालकर और फिर इतने चाल आगे चलते हैं तो कहते कि उसको अक्ष कहते हैं। और इनके अतिरिक्त कौड़ियों को वराटक कहते हैं, यानी जो फांसी जो डालते हैं उसको तो कराट वराटक, यानी मेरे ख्याल से चौकर होते उसमें अक्षर भी लिखे होते हुए इस तरह से डालने के, इसे लगता है मुझे। हमारे घर में एक पुस्तक थी और छोटी लकड़ी इससे भी आधी ऐसी, तो उसके चहु और कुछ नाम लिखे रहते थे और ऐसे ऐसे करके ऐसा डालना तो एक अक्षर आया, दूसरा डालना, दूसरा आया, तीसरा डालना, फिर तीन अक्षरों को एक साथ जैसे य य य य व स कुछ भी होगा तो पूरी पुस्तक थी वो, फिर पढ़ना उसके कॉम्बिनेशन वाला। जैन ही शास्त्र था कोई, और उसमें कुछ बातें ऐसे बताई जाती थी रोज, मुझे तो याद है रोज दर्शन करने के बाद हम उसको देखते थे, यानी शायद कोई संयम की बात आती थी या ऐसा कुछ था कि होगी ना, पता नहीं अभी मम्मी के यहाँ होगी। बचपन में मुझे याद है वो लकड़ी भी याद है, उसके अक्षर भी, यानी सब रजिस्टर है मेरे मन में। तो फिर हाँ वैसे, हाँ इसमें भी ऐसा होता है ना कि ऐसा आज धारण करो या ऐसी बात है या ऐसा कुछ बताते हैं कि शुभ है क्या अशुभ है, जो कुछ होता होगा। अभी वो इतना याद नहीं है, परंतु तीन अक्षरों के कॉम्बिनेशन से बहुत सारी बातें उसमें थी लिखी हुई, पूरी पुस्तक थी इतनी जाड़ी ऐसे। हाँ कहाँ गया वराटक, तभी मुझे आया ये याद आया वराटक। इस प्रकार इन दोनों पदों के द्वारा असद्भाव स्थापना का विषय दिखलाया है, यानी वो कौड़ी है ये है वो तो असद्भाव है ना, तथा का, और पूर्वोक्त पदों के द्वारा सद्भाव स्थापना का विषय दिखलाया है। सूत्र में जे चमी अन्य एवं आदिया यह जो वचन आया है सो अनुक्त का संग्रह का, यानी जो बताया नहीं है इसी प्रकार अन्य भी, इस तरह से उसको समझना, इसका उभयत्र ही संबंध करना चाहिए। उभयत्र ने तदाकार और अतदाकार दोनों में ही है, जैसे आजकल में भी कितनी क्या क्या अनेक वस्तुएं निकली ना, थर्मोकोल का बनाते हैं, लकड़ी का बनाते, और भी कुछ चीजों का बनाते हैं, ऐसे अतदाकार में भी वो शतरंज है और भी कितनी चीजें हैं। स्थापना ऐसा कहने पर उससे मति विशेष रूप धारणा ज्ञान ग्रहण करना चाहिए, मति ज्ञान का जो विशेष धारणा ज्ञान उसकी बात यहाँ लेनी है। इन पूर्वोक्त सद्भाव और असद्भाव के भेद से, यानी तदाकार और अतदाकार के भेद से, दो प्रकार के पदार्थों में स्थापना अर्थात बुद्धि से, अमा अर्थात अभेद रूप से, यानी वो स्थापना के ने दो पदार्थों में हमने बुद्धि में अभेद कर दिया, बुद्धि में वो स्पर्श हो गया उसका। जो स्पर्श ऐसी स्थापना होती है वह सब स्थापना स्पर्श है। शंका, यह स्पृश्य स्पर्शक भाव कैसे हो सकता है? स्पृश्य यानी स्पर्श करने योग्य और स्पर्शक यानी स्पर्श करने वाला। समाधान, नहीं, क्योंकि बुद्धि से एकत्व को प्राप्त हुए उनमें स्पृश्य स्पर्शक भाव के होने में कोई विरोध नहीं आता, अथवा सत्व और प्रमेयत्व आदि की अपेक्षा सबका सर्व विषयक स्पर्शन पाया जाता है। विशेषार्थ, स्थापना के दो भेद है, सद्भाव स्थापना और असद्भाव स्थापना। तदाकार स्थापना को सद्भाव स्थापना कहते हैं और अतदाकार स्थापना को असद्भाव स्थापना कहते हैं। जिनमें स्थापना की जाती है वे पदार्थ जुदे होते हैं और जिनकी स्थापना की जाती है वे पदार्थ जुदे होते हैं। दो भिन्न पदार्थ है ना, जैसे मंदिर में जो भगवान हम कहते हैं वो मूर्ति में हमने साक्षात भगवान की स्थापना की, वो दोनों जुदे जुदे है, मूर्ति जुदी है और भगवान साक्षात तो पहले थे हमारे अरिहंत अवस्था में, अभी तो सिद्धालय में है। तो कहते प्रकृत में स्पर्श का विचार चला है, इसलिए प्रश्न है कि स्पर्श से भिन्न पदार्थों में स्पर्श शब्द का व्यवहार कैसे किया जा सकेगा। समाधान यह है कि बुद्धि से अन्य पदार्थ में स्पर्श का आरोप किया जाता है जिससे उसमें यह स्पर्श है ऐसा व्यवहार बन जाता है। किसी भी चीज में, जैसे हमने वो मूर्ति में भगवान की स्थापना की तो हमने पट्टी को दिखाकर कहा आप उस यह स्पर्श है, तो इसमें हमने स्पर्श की स्थापना कर दी। प्रकृत में इसी दृष्टि से स्पर्श स्थापना के दो भेद और उनके विविध उदाहरण उपस्थित किए गए हैं। जो सो दवो फांसो नाम, ऐसे नाम स्थापना और द्रव्य निक्षेप अभिद्रव्य की बात है। अब द्रव्य स्पर्श का अधिकार है, यह वचन पूर्व प्रतिज्ञा की संभाल करता है। हमने वहां देखा ये स्थापना, हमने स्थापना देखा था, नाम स्पर्श एक हुआ। अभी ये हमने ये देखो स्थापना सूत्र वाला दो नंबर हुआ, हाँ पेज तीन नंबर पर था स्पर्श निक्षेप के। अब द्रव्य स्पर्श की जो ग्यारह का पढ़ा था ना, जो सदवो फासो नाम पढ़ा था, अब ये तीन नंबर का हुआ। द्रव्य स्पर्श का अधिकार, यह वचन पूर्व प्रतिज्ञा की संभाल करता है। कौन सी पूर्व प्रतिज्ञा? पेज नंबर तीन पर की थी। अथवा आगे इसका अर्थ कहते हैं, यह जतलाने के लिए यह वचन कहा है। जम दव दवेण फुसदी सो सवो दव फासो नाम, जो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य से स्पर्श को प्राप्त होता है वह सब द्रव्य स्पर्श है। यथा परमाणु पुद्गल शेष पुद्गल द्रव्य के साथ स्पर्श को प्राप्त करता है, क्योंकि पुद्गल द्रव्य स्वरूप द्रव्य रूप से परमाणु पुद्गल का पुद्गल द्रव्य रूप से परमाणु पुद्गल का शेष पुद्गलों के साथ एकत्व पाया जाता है। एक पुद्गल द्रव्य का शेष पुद्गल द्रव्यों के साथ जो संयोग या समवाय संबंध होता है वह द्रव्य स्पर्श कहलाता है। अथवा जीव द्रव्य और पुद्गल द्रव्य का जो एक में एक संबंध होता है वह द्रव्य स्पर्श कहलाता है। यानी एक्चुअली एक दूसरे को स्पर्शित होना उसको द्रव्य स्पर्श कहा। फिर शंकाकार पूछते हैं, जीव द्रव्य अमूर्त हैं और पुद्गल द्रव्य मूर्त हैं, इनका एक में एक संबंध कैसे हो सकता है? उसका समाधान, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि संसार अवस्था में जीवों में अमूर्तपना नहीं पाया जाता। देखो हमने कल सम्यक तो मार्गणा में भी आपको बताया था, जीवकांड में से जीव दो प्रकार के, एक रूपी और एक अरूपी। संसार अवस्था में उनको रूपी कहते, पुद्गल भी कहते हैं, और मुक्त अवस्था में उनको अरूपी कहेंगे, क्योंकि वो अनादि से बंद है और अनादि से कर्म रहित कभी जीव हुआ ही नहीं है। शरीर रहित एक दो समय के लिए हो भी सकता है, परंतु कर्म से रहित कभी नहीं हुआ है। यानी कारमान और तेजस का तो उसका तो द्रव्य का संबंध हमेशा बना रहेगा, इसलिए उसको मूर्त भी कहते हैं। शंका, यदि संसार अवस्था में जीव मूर्त है तो मुक्त होने पर वह अमूर्तपने को कैसे प्राप्त हो सकता है? समाधान, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि जीव में मूर्तत्व का कारण कर्म है। अतः कर्म का अभाव हो जाने पर तज्जनित यानी उसके द्वारा प्राप्त मूर्तत्व का भी अभाव हो जाता है, इसलिए सिद्ध जीवों के अमूर्तपने की सिद्धि हो जाती है। फिर शंकाकार पूछते हैं, जीव और पुद्गलों का आदि बंध कैसे है? आदि बंध ने स्टार्टिंग कब हुई जीव और पुद्गल के बंध की? समाधान, नहीं, क्योंकि प्रवाह रूप से जीव और पुद्गल अनादि बंधन बद्ध है, अनादि बंधन बद्ध है, प्रवाह रूप से चले आ रहे हैं, पर उसी पुद्गल के साथ बंध नहीं। वो तो नए नए पुद्गल आते हैं, पुराने चले जाते हैं, कि प्रवाह रूप से जीव और पुद्गल अनादि बंधन बद्ध है, अतः उसका आदि बंध नहीं बनता। पर इसका अर्थ यह नहीं है कि कर्म व्यतिरिक्त बंध की अपेक्षा इसका अर्थ यह नहीं कि कर्म व्यक्तिरूप यानी पर्टिकुलर कर्म, विवक्षित कर्म व्यक्ति रूप बंध की अपेक्षा वह अनादि है। यानी जो एक एक समय प्रबद्ध है वह नया नया कर्म बन रहा है हर समय, व्यक्ति की अपेक्षा वह अनादि का नहीं है। वो नए नए कर्म परमाणु आते रहते हैं, कि कर्म इसका अर्थ यह नहीं है कि कर्म व्यक्ति रूप बंध की अपेक्षा हुआ अनादि है। अर्थ यह नहीं है, अर्थ क्या होता है कि व्यक्ति की अपेक्षा वो अनादि का नहीं है, क्योंकि ऐसा मानने पर कर्म का कभी नाश नहीं होने से जीव के मरण के अभाव का प्रसंग आता है। क्या कहा, अगर उसको वही का वही कर्म कायम मानेंगे तो उसके मरण भी नहीं होगा, और उपजीवी औषधों के निमित्त से व्याधि विनाश के अभाव का प्रसंग प्राप्त होता है। यानी क्या कहते हैं, औषधियों के द्वारा रोग का विनाश देखा जाता है, परंतु उसको वही का वही कर्म कायम मानो तो उसका रोग भी मिटने का कोई ये भी नहीं मिलेगा। वहां पर पुद्गलों का जीव और पुद्गलों के साथ ही स्पर्श नहीं पाया जाता, किंतु आकाश आदि द्रव्यों के साथ भी उनका स्पर्श पाया जाता है, क्योंकि नैगम नय की अपेक्षा इनकी प्रत्यासत्ति देखी जाती है। प्रत्यासत्ति यानी नजदीकता, यानी केवल जीव और पुद्गलों का ही बंधन नहीं होता है, यानी स्पर्श नहीं होता है, यह स्पर्श की बात है, पर पुद्गल का पुद्गल के साथ, पुद्गल का आकाश धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य सबके साथ स्पर्श पाया जाता है। शंका, द्रव्य की स्पर्श संज्ञा कैसे है? द्रव्य स्पर्श बताया ना, द्रव्य निक्षेप के द्वारा स्पर्श बताया था, नहीं, क्योंकि जिसके द्वारा स्पर्श किया जाता है या जो स्पर्श करता है, इस उत्पत्ति के अनुसार स्पर्श शब्द की सिद्धि होने से द्रव्य की स्पर्श संज्ञा बन जाती है। आगे की जो चर्चा और पैराग्राफ है बड़ा है, कल ही उसको ले लेंगे, अभी हम यहीं रुकते हैं। जावानी के ज्ञान ते सूझे लो पालो सोवाणी मस्तक नम सदा देत हो। अश्विन भाई।